नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बिहार ओलंपिक संघ को भंग किया, हॉकी बिहार की मान्यता भी रद्द। स्थानीय निकायों के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले दो दिन तक तापमान में और गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन श्री खान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने बिहार ओलंपिक संघ को भंग कर दिया है। आईओए ने जांच समिति के अध्यक्ष हेमंता कुमार कलिता की सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई की है। आईओए ने 5 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन भी किया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को इस तदर्थ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। ये कमेटी इस वर्ष 10 अप्रैल को आईओए को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता भी रद्द कर दी है। इस संबंध में हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार को पत्र जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि राजगीर में आयोजित एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में हॉकी बिहार के महासचिव मुश्ताक अहमद ने कोई सहयोग नहीं दिया था। इससे प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया के प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। इसके लिए हॉकी बिहार को शो कॉज नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था, लेकिन हॉकी बिहार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से डॉक्टर सविता पारी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में भारत के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में 3.5 से 4% की वृद्धि की संभावना है।
चावल की कीमत किसान को ठीक मिले इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई। और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है जो कड़ी मेहनत करके पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई की मेजर्स सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड द्वारा विभाग के साथ किए गए इकरारनामे को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में इस एजेंसी की ओर से प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति समेत कई अन्य विसंगतियां पाई गई थी। गृह विभाग ने नए आपराधिक कानून के तहत कांडों के अनुसंधान को लेकर अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन स्वयं खरीदने का आदेश जारी किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि खरीदारी का बिल जमा करने के बाद अधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन की राशि मिल जाएगी। एक रिपोर्ट।
गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार लैपटॉप की खरीद के लिए 60,000 और स्मार्टफोन के लिए 20,000 रुपए की राशि का भुगतान होगा। नए आपराधिक कानून में घटनास्थल का वीडियो बनाने के साथ पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी का ऑडियो वीडियो में बयान दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसंधान पुलिस अधिकारियों को ई साक्ष ऐप पर केस से जुड़े साक्ष्य को अपलोड करना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अमरनाथ प्रसाद।
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधान सचिव स्तर में 1, विशेष सचिव स्तर में 2 और सचिव स्तर में 3 अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। ये सभी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। विभाग के अनुसार केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाने वालों में आईएएस अधिकारी साकेत कुमार, रमन कुमार, एम चाम रामचंद्र टुडू भी शामिल हैं। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई और यह 1,73,00,00,000 से अधिक हो गया है। दिसंबर 2023 में सकल जीएसटी राजस्व 1,64,000,00,000 रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836,00,000 रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499,00,000 रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783,00,000,000 रुपए और उपकर 11,471,00,000 रुपए रहा। पिछले वर्ष नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और यह 1,82,000,00,000 रुपए से अधिक रहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी का सिलसिला जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिलेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 9 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आज से 6 जनवरी तक प्रभावी होगा। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस आदेश के तहत संचालित होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। एयर इंडिया अब कुछ चुनिंदा उड़ानों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यात्री वाईफाई का उपयोग तभी कर पाएंगे जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसके साथ एयर इंडिया देश के भीतर घरेलू उड़ानों में यह सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई है। सार्वजनिक तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 14.50 रूपये की कटौती की है। इस कटौती के बाद पटना में व्यावसायिक सिलेंडर की नई कीमत 2,073 रूपये हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,087.50 रूपये थी। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दानापुर सिकंदराबाद और रक्सौल सिकंदराबाद समेत 8 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। इधर आज से पटना जेसीडी समेत 7 ट्रेनों का ठहराव चंपापुर हॉल्ट और सालिमपुर स्टेशन पर किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना मोकामा मेमू ट्रेन का करौटा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव को 31 मार्च तक विस्तारित किया गया है। प्रदेश के मद्य निषेध मंत्री और सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रत्नेश सदा सड़क हादसे में घायल हो गए। श्री सदा सहरसा के महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव बलिया सीमर में टहलने के दौरान कल एक अनियंत्रित ऑटो रिक्शा की चपेट में आ गए। पूर्णिया में नशा के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस ने जिले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र से दो व्यक्तियों को 2894 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने दूरस्थ शिक्षा कोर्स की विशेष परीक्षा के लिए आवेदन तिथि में विस्तार किया है। यह परीक्षा अब 4 जनवरी को होगी। इससे पहले यह तिथि 30 दिसंबर तक निर्धारित थी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में आज से 9 जनवरी तक खेल सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मी भी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। केरल में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में बिहार के आकाश कुमार ने रजत पदक जीता है। आकाश बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के जमील अहमद ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में पछुआ हवा के प्रभाव से 8 डिग्री पारा गिरा, ठिठुरन बढ़ी। प्रभात खबर ने लिखा है, बर्फीली हवाओं ने बिहार को दिन में भी कपाया, अभी नहीं होंगे सूरज के दर्शन। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, नए वर्ष पर दर्शन के लिए देवालयों में उमड़ा श्रद्धा का समंदर, 5 लाख से अधिक भक्तों ने पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर और इस्कॉन में नवाया शीश। अखबार लिखता है, 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, जमीन की बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा, आवेदन जरूरी नहीं, UPMP जैसी बिहार में ऑनलाइन जमाबंदी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बिहार ओलंपिक संघ को भंग किया, हॉकी बिहार की भी मान्यता रद्द। स्थानीय निकायों के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिन तक तापमान में और गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।